स्पष्ट हुआ कि अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा शोध रिपोर्ट लिखने का एक उत्तम एवं मानक स्टैंडर्ड प्रारूप तैयार किया गया है का अनुसरण संसार के लगभग सभी देशों के मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है। पैराग्राफ चेंज। शोध रिपोर्ट लिखने की शैली के कुछ आधारभूत नियम अंडर ब्रैकेट सम फंडामेंटल रूल्स ऑफ स्टाइल ऑफ राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट। किसी भी वैज्ञानिक शोध की रिपोर्ट लिखने का उद्देश्य मूलतः यह होता है कि पाठक किए गए को ठीक से समझे, उसका मूल्यांकन करे तथा उस अध्ययन का यदि चाहे तो वो उसका वर्णिक लिटरल रिप्लिकेशन कर सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि वह शोध रिपोर्ट लिखने के लिए कुछ आधारभूत नियमों का पालन करें। इन नियमों में निम्नांकित मुख्य प्रमुख हैं। एक शोध रिपोर्ट में वैसा शोध का वर्णन किया जाता है जो पूरा हो चुका होता है, अतः भूतकाल पास्ट टेंस में लिखा जाता है। इसके अपवाद के रूप में मात्र वैसा निष्कर्ष कंक्लूजन जो वर्तमान या भविष्य की परिस्थिति के लिए लागू होता है को ही वर्तमान काल में रखा जाता है। दो, उन सभी स्रोतों सोर्सेस का उल्लेख करें जिनसे अपने समस्याओं का तथ्यों को लिया है, इसमें लेखक का अंतिम नाम नेम तथा वर्ष का उल्लेख होना चाहिए, जैसे ए के सिन्हा अंडर ब्रैकेट ए के सिन्हा एवं बी के वर्मा अंडर ब्रैकेट बी के वर्मा द्वारा किए गए शोध या प्रयोग से हम तथ्य को ले रहे हैं, और यदि इन लोगों का अध्ययन 2003 में प्रकाशित हुआ है तो हम इसे इस तरह लिखेंगे, सिन्हा एवं वर्मा अंडर ब्रैकेट सिन्हा एंड वर्मा 2003। उसी तरह से हम लिख सकते हैं गिलफोर्ड एवं स्मिथ गिलफोर्ड एंड स्मिथ 2001 थॉर्नडाइक एवं हेगन थॉर्नडाइक एंड हेगन 1992 आदि आदि। यहाँ पर एक विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि जहाँ दो लेखक के शोध को संयुक्त रूप से संदर्भित किया जाता है वहाँ उसे लिखने के दो तरीके हैं। पहला तरीका वह है जिसमें हम इन दोनों लेखकों के अंतिम नामों को एंड से जोड़ते हैं, तथा दूसरा तरीका वह है जहाँ हम इन दोनों लेखकों के नाम को एंड चिन्ह से जोड़ते हैं। जैसे हम लोग इन दो नामों को एंड से इस परिस्थिति में जोड़ते हैं, हाइफन थॉर्नडाइक एंड हेगन 1992 डिफाइंड इंटेलिजेंस। परंतु जब हम दोनों नामों को एक संदर्भ के रूप में वाक्य के अंत में लघु कोष्ठक पैरेंथेसिस में लिखते हैं तो उसे एंड द्वारा जोड़ते हैं, जैसे इंटेलिजेंस वॉज डिफाइंड अंडर ब्रैकेट थॉर्नडाइक एंड हेगन 1992। जब दो से अधिक लेखकों द्वारा प्रकाशित किसी शोध पत्र से तथ्यों या सूचनाओं को लिया जाता है तो उसमें प्रथम बार तो सभी नामों का उल्लेख किया जाता है और उसके बाद सिर्फ प्रथम लेखक तथा लैटिन सुक्ति लैटिन फ्रेज एल डॉट का उपयोग किया जाता है, जैसे प्रथम बार बोअस सिन्हा ड्यूक एंड हेमन अंडर ब्रैकेट 2003, परंतु बाद में बोवेल ईटी एल 2003 ही लिखा जाना चाहिए। तीन, जहां तक संभव हो शोध रिपोर्ट में किसी अन्य स्रोत से प्रत्यक्ष रूप कुछ उद्धृत कोट नहीं करना चाहिए बल्कि उसमें उद्धृत विचारों को अपनी भाषा शैली में लिखना चाहिए। शोध रिपोर्ट में लेखक को किसी दूसरे के अध्ययन न कि उसके लेखक को संबोधित करते हुए तथ्यों को लिखना चाहिए। जैसे हमें यह नहीं लिखना चाहिए कि अंडर डबल इन्वर्टेड कॉमा द रिजल्ट्स आर रिपोर्टेड बाय रस्तोगी ई टी ए एल अंडर ब्रैकेट 2003 डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड, बल्कि इसकी जगह पर हमें लिखना चाहिए द रिजल्ट्स आर रिपोर्टेड इन रस्तोगी ई टी ए एल डॉट अंडर ब्रैकेट 2003। पैराग्राफ चेंज। फोर, अपने अध्ययन को अन्य अध्ययनों से भिन्न करने के लिए दिस स्टडी या द प्रेजेंट स्टडी का उपयोग किया जाना चाहिए, परंतु दिस स्टडी या द प्रेजेंट स्टडी का उपयोग मानव क्रिया के रूप में नहीं होना चाहिए, यथा दिस स्टडी अटेम्प्टेड टू शो नहीं लिखा जाना चाहिए। 5. संकेताक्षरों एब्रीविएशंस के प्रयोग से बचना चाहिए। शोध रिपोर्ट में संकेताक्षरों का उपयोग मात्र 3 परिस्थितियों में युक्तिसंगत माना गया है। हाइफन ए, अगर पद ऐसा है जिसमें कई शब्द सम्मिलित हुए हों या उसमें बहुत सारे अक्षर सम्मिलित हों। बी, अगर पद का उपयोग रिपोर्ट में बहुत बार हो। सी, अगर शोध में बहुत सारे संकेताक्षरों का उपयोग नहीं किया जा रहा हो। अगर शोध रिपोर्ट में संकेताक्षर का उपयोग आवश्यक हो तो प्रत्येक शब्द के प्रथम अक्षर को मिलाकर इसे तैयार किया जा सकता है। पूरे पद को प्रथम बार परिभाषित करके फिर उसके बाद उसका संकेताक्षर का उपयोग किया जा सकता है। जैसे लॉन्ग टर्म मेमोरी LTM इज डिफाइंड एज, और फिर उसके बाद मात्र LTM का ही उपयोग किया जा सकता है। 6. जहाँ तक संभव हो स्वीकृत मनोवैज्ञानिक पदों साइकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी का ही उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त संक्षिप्त संकेत कॉन्ट्रैक्शन तथा उपभाषी पदों स्लैंग टर्म्स का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका अर्थ दूसरे देशों के लोगों द्वारा संभवतः नहीं समझा जा सकता। 7. शोध रिपोर्ट में 0 से लेकर 9 (9) की संख्याओं के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए तथा 10 या उससे अधिक की संख्याओं के लिए अंक का प्रयोग किया जाना चाहिए, परंतु अंक का उपयोग किसी भी आकार संख्या साइज नंबर के लिए हो सकता है। यदि ए, शोधकर्ता को संख्याओं का एक क्रम सीक्वेंस लिखना हो और उसमें कम से कम 10 या उससे अधिक हो। बी, संख्या में दशमलव डेसिमल हो या सांख्यिकी परिणाम का वर्णन हो या कोई यथार्थ मापन प्रिसाइज मेजरमेंट के संदर्भ में लिखा जाना हो। जैसे यह लिखा जा सकता है द 5 कंडीशन विद 3 इंडिविजुअल्स पर कंडीशन। शोध रिपोर्ट में किसी भी वाक्य की शुरुआत अंक में लिखे गए संख्या से नहीं होती है। पैराग्राफ चेंज 8. APA शैली में शोध रिपोर्ट में प्रयोज्यों के लिए सब्जेक्ट्स के जगह पर पार्टिसिपेंट्स लिखने की सिफारिश की गई है, परंतु जहां उचित हो वर्णात्मक पद जैसे स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन, मेन, वुमेन, रैट्स, पिजन्स, डॉग्स आदि का उपयोग भी किया जा सकता है। 9. शोध रिपोर्ट में सुस्पष्ट शब्दों प्रिसाइज वर्डिंग का उपयोग किया जाना चाहिए। पूर्वाग्रहित भाषा बायस्ड लैंग्वेज का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। जहां संभव हो तटस्थ पदों न्यूट्रल टर्म जैसे चेयरपर्सन का उपयोग किया जाना चाहिए। पैराग्राफ चेंज स्पष्ट हुआ कि एक उत्तम शोध रिपोर्ट के लिए कुछ आधारभूत नियम हैं जिनका पालन करने से रिपोर्ट अधिक वैज्ञानिक एवं उत्तम होता है। शोध प्रस्ताव तैयार करना (_ राइटिंग अ रिसर्च प्रपोजल) कोई भी शोध प्रस्ताव को तैयार करना शोध प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण परंतु कठिन कदम माना गया है। शोध प्रस्ताव से तात्पर्य यह एक ऐसा प्रस्ताव से होता है जिसमें शोधकर्ता किसी शोध समस्या के समाधान के लिए विशेष कार्यविधि, संभावित समय एवं संभावित धन का व्यय आदि का उल्लेख करता है। बहुत सारे संस्थान यह चाहते हैं कि शोध कार्य प्रारंभ करने के पहले शोधकर्ता एक शोध प्रस्ताव दे ताकि प्रोजेक्ट का मूल्यांकन किया जा सके और उसकी अंतिम मंजूरी दी जा सके। पैराग्राफ चेंज चूंकि विभिन्न संस्थानों द्वारा सामान्यतः अलग अलग ढंग से शोध प्रस्ताव मांगे जाते हैं, अतः शोध प्रस्ताव का कोई सार्वत्रिक प्रारूप यूनिवर्सल फॉर्म तो नहीं है, परंतु कोई भी शोध प्रस्ताव में निम्नांकित 9 चरणों का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। पैराग्राफ चेंज 1. समस्या का उल्लेख तथा उसका महत्व स्टेटमेंट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रॉब्लम। शोध की समस्या का उल्लेख घोषणात्मक कथन डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट के रूप में होता है, परंतु उसे प्रश्नवाचक कथन इंटेरोगेटिव फॉर्म में भी अभिव्यक्त किया जा सकता है। सामान्यतः शोधकर्ता शोध की समस्या का उल्लेख इस ढंग से करता है कि उससे शोध के विशिष्ट लक्ष्य का स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया जा सके। शोध समस्या के उल्लेख के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं: ए, स्कूल के प्रतियोगिता खेलों में भाग लेने से छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि में कमी आती है। बी, सह शिक्षा छात्रों के नैतिकता स्तर को श्रेष्ठ बनाता है। शोध प्रस्ताव में शोधकर्ता न केवल शोध समस्या का उल्लेख ही करता है बल्कि वह उसके महत्व सिग्निफिकेंस पर भी बल डालता है। दूसरे शब्दों में वह यह भी बतलाने की कोशिश करता है कि इस समस्या का समाधान किस तरह से शैक्षिक या मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रभावित करेगा और उसका विशेष लाभ मनोवैज्ञानिकों को होगा। पैराग्राफ चेंज दो, परिभाषा, पूर्व कल्पना, परिभाषा तथा सीमांकन। डेफिनेशन, अजम्पशन, लिमिटेशन, डेलिमिटेशन। ब्रैकेट क्लोज। शोध प्रस्ताव का यह दूसरा चरण है जिसमें चार पक्षों पर शोधकर्ता बल डालता है, जो इस प्रकार है। ए, परिभाषा, डेफिनेशंस। शोध प्रस्तावकर्ता यहाँ अध्ययन में सम्मिलित होने वाले सभी चरों को संक्रियात्मक ढंग से ऑपरेशनली परिभाषित करता है। इन प्रक्रियाओं से शोधकर्ता का अपना दृष्टिकोण स्पष्ट होता है तथा उसके प्रस्ताव का मूल्यांकन करने में सहायता मिलती है। बी, पूर्व कल्पना, अजम्पशंस। पूर्व कल्पना से तात्पर्य उस कथन की उक्ति से होता है जिसमें शोधकर्ता विश्वास तो करता है परंतु उसकी जांच वह नहीं कर सकता है। ऐसी पूर्व कल्पनाओं का उल्लेख भी शोध प्रस्ताव में महत्वपूर्ण माना जाता है। सी, परिसीमा, लिमिटेशन। परिसीमा से तात्पर्य उन अवस्थाओं से होता है जो शोधकर्ता के नियंत्रण से बाहर होता है तथा जो अध्ययन के निष्कर्ष तथा उसका अन्य परिस्थितियों में अनुप्रयोग एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाता है। शोध प्रस्ताव में अध्ययन की परिसीमा का भी उल्लेख आवश्यक होता है। डी, सीमांकन, डिलिमिटेशंस। सीमांकन अध्ययन का चहरदीवारी होता है। प्रस्ताव में इस तथ्य का भी उल्लेख होता है कि अध्ययन से प्राप्त तथ्य किन व्यक्तियों पर लागू होगा तथा उस विशिष्ट प्रतिदर्श के बाद निष्कर्ष को सही नहीं ठहराया जा सकता। इसी प्रक्रिया को सीमांकन की संज्ञा दी जाती है। तीन, संबंधित साहित्य का समीक्षा, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। शोध प्रस्ताव में वर्तमान समस्या से संबंधित पहले किए गए शोध का भी उल्लेख होना आवश्यक है। इसलिए शोधकर्ता वैसे सभी अध्ययन जो संगत रेलेवेंट होते हैं तथा जिन्हें स्पष्ट एवं विस्तृत ढंग से उल्लेख किया जा चुका है को प्रस्ताव में सम्मिलित करता है। इस तरह की समीक्षा के निम्नांकित लाभ होते हैं। ए, समीक्षा से पहले किए गए अध्ययनों की पुनरावृत्ति होने की संभावना नहीं होती है। बी, समीक्षा से उत्तम प्राक्कल्पना हाइपोथेसिस बनाने तथा उत्तम अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त होते हैं। सी, समीक्षा से शोधकर्ता को यह भी पता चल जाता है कि अब तक क्या अज्ञात रहा है तथा जिसे अब तक जांचा नहीं गया है। चार, प्राक्कल्पना हाइपोथेसिस। शोध प्रस्ताव के इस चरण में मुख्य प्राक्कल्पनाओं का सूचीकरण किया जाता है। प्राक्कल्पना को उल्लेखित करने से समस्या का स्वरूप तथा अनुसंधान के पीछे छिपी तर्क के बारे में पता चलता है। इतना ही नहीं, इससे आंकड़े संग्रहण प्रक्रिया को दिशा भी प्राप्त होता है। हालांकि शोध प्राक्कल्पना शोध समस्या या प्रश्न का एक अस्थायी उत्तर होता है। यह एक ऐसा अनुमान होता है जो गत शोध या सिद्धांत पर आधारित होता है। आंकड़े इकट्ठा कर लेने के पहले प्राक्कल्पना का निर्माण आवश्यक होता है। प्राक्कल्पना को उत्तम कहलाने के लिए अन्य बातों के अलावा निम्नांकित चार विशेषताओं का होना अनिवार्य है। ए, इसे विवेकी रीजनेबल होना चाहिए। बी, इसे ज्ञात तथ्यों या सिद्धांतों के अनुकूल होना चाहिए। सी, इसका स्वरूप जांचनीय होना चाहिए। डी, इसे संभावित सरल शब्दों में उल्लेख किया जाना चाहिए। पाँच, विधियाँ, मेथड्स। शोध प्रस्ताव के यह भाग तीन उपभागों में बटे होते हैं, प्रयोज्य सब्जेक्ट, कार्यविधि प्रोसीजर्स तथा आंकड़े विश्लेषण डेटा एनालिसिस। प्रयोज्य उपभाग में उस जीव संख्या पॉपुलेशन का वर्णन होता है जिससे शोधकर्ता प्रयोज्य चुनने की योजना रखता है। इसमें जीव संख्या की आयु प्रसार, एज रेंज, सामाजिक आर्थिक स्तर, यौन प्रजाति, मानसिक आयु, बुद्धिलब्धि, शैक्षिक उपलब्धि स्तर आदि का भी उल्लेख होता है। इसमें इस बात का भी उल्लेख किया जाता है कि इस शोध में प्रयोज्यों की कितनी संख्या होगी तथा उसे किस तरह चयन किया जाएगा। पैराग्राफ चेंज। कार्यविधि भाग में शोध योजना की विधि का उल्लेख होता है। इसमें विस्तृत रूप से इस बात का उल्लेख होता है कि क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, किस तरह के आंकड़े की आवश्यकता होगी तथा आंकड़े संग्रहण के लिए किस तरह के परीक्षणों या उपकरणों का उपयोग किया जाएगा। पैराग्राफ चेंज, आंकड़ा विश्लेषण उपभाग पे उन विधियों का वर्णन होता है जिसके द्वारा आंकड़े का विश्लेषण किया जाने वाला है। यहाँ की दी गई सूचना विशिष्ट होती है तथा इतनी विस्तृत होती है कि उससे संबंधित किसी भी तरह के प्रश्न या आशंका का उत्तर पाठक को अपने आप आसानी से मिल जाए। पैराग्राफ चेंज 6, समय अनुसूची अंडर ब्रैकेट टाइम शेड्यूल। शोध प्रस्ताव के इस भाग में स्पष्टतः एक समय सीमा दी होती है जिसके भीतर शोध प्रोजेक्ट को पूरा कर लेने का दावा किया जाता है। इसमें सामान्यतः शोध के कार्यों को छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक इकाई को पूरा किए जाने का समय सीमा का उल्लेख कर दिया जाता है। 7, संभावित परिणाम एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। एक उत्तम शोध प्रस्ताव में शोध के संभावित परिणाम का भी वर्णन होता है। इसमें संभावित परिणाम का संक्षिप्त रूप से वर्णन कर दिया जाता है तथा उन तथ्यों पर भी प्रकाश डाला जाता है जो शोध के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें संभावित परिणाम का उचित विकल्प का भी वर्णन होता है तथा उन समस्याओं का भी उल्लेख होता है जिनका जन्म उन परिस्थितियों में हो सकता है जब वास्तविक परिणाम संभावित परिणाम से भिन्न होंगे। पैराग्राफ चेंज 8, संदर्भ रेफरेंसेस। इस भाग में शोध प्रस्ताव में सम्मिलित किए गए वैज्ञानिकों के नामों को तथा उनके शोध लेख के प्रकाशन से संबंधित संपूर्ण विवरण होता है। यह बहुत कुछ शोध के अंतिम रिपोर्ट जो शोध पूरा होने के बाद तैयार किया जाता है के ही समान होता है। 9, परिशिष्ट अपेंडिक्स। शोध प्रस्ताव में परिशिष्ट का होना आवश्यक है। इसमें उन सभी सामग्रियों की सूची होती है जिसे शोध में उपयोग किया जाता है। इसमें उपयोग में लाए जाने वाले परीक्षण टेस्ट तथा मापनी स्केल का एक एक कॉपी, उद्दीपन सामग्रियों तथा अन्य उपकरणों की सूची तथा मानक निर्देश की सूची आदि होती है। पैराग्राफ चेंज, स्पष्ट हुआ कि किसी शोध प्रस्ताव के कई चरण होते हैं। इन चरणों को मद्देनजर रखकर यदि शोध प्रस्तावकर्ता शोध तैयार करता है तो वह निश्चित रूप से एक उत्तम शोध प्रस्ताव कहलाएगा। पैराग्राफ चेंज, मनोविज्ञान शोध में नैतिक सिद्धांत एवं समस्याएं अंडर ब्रैकेट एथिकल प्रिंसिपल्स एंड इश्यूज इन साइकोलॉजिकल रिसर्चेस। मनोवैज्ञानिक शोधों में अक्सर यह देखा गया है कि कभी कभी शोध अध्ययन का स्वरूप ऐसा होता है कि वह अध्ययन व्यवहारिक दृष्टिकोण से साध्य या संभव तो है परंतु नैतिक दृष्टिकोणों से उसे करना संभव नहीं है। जैसे यदि कोई शोधकर्ता यह अध्ययन करना चाहता है कि आरंभिक वंचन अर्ली डिप्रिवेशन का बच्चों के संज्ञात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से निश्चित रूप से एक उत्तम शोध अध्ययन होगा परंतु नैतिक दृष्टिकोण से बहुत ही साध्य नहीं होगा क्योंकि मानव शिशुओं को पशुओं की तरह उनके आरंभिक बाल्यावस्था में अध्ययन के लिए एक वंचित वातावरण में नहीं रखा जा सकता है और न तो कोई माता पिता ऐसा करने की इजाज़त ही देंगे। इस तरह की नैतिक समस्याएँ मनोवैज्ञानिक शोधों में अक्सर देखने को मिलती हैं। ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक सोसाइटी ब्रिटिश साइकोलॉजिकल सोसाइटी 1993 तथा अमेरिकन मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन 1992 ने मिलकर कुछ ऐसी समस्याओं की पहचान किया है जिन पर विचार कर तय किया जा सकता है कि कोई विशेष शोध अध्ययन नैतिक रूप से साध्य फीजिबल है या नहीं। ऐसी कुछ प्रमुख सिद्धांत एवं समस्याएँ निम्नांकित हैं। पैराग्राफ चेंज 1, प्रयोजकों की सुरक्षा एवं कल्याण प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ पार्टिसिपेंट। मनोवैज्ञानिक शोध की सभी नैतिक संहिता एथिकल कोड्स में इस बात पर बल डाला गया है कि मनोवैज्ञानिक अपने शोध तथा प्रयोग में भाग लेने वाले प्रयोज्यों सब्जेक्ट्स के उपकल्याण का ध्यान रखें तथा इस बात का भी पुख्ता इंतजाम करें कि शोध प्रक्रिया से प्रयोज्य दैहिक या मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त नहीं हो। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति जो मनोवैज्ञानिक शोध में भाग लेते हैं उनके हानि की जोखिम सामान्य जीवन शैली बिताने में हो रहे हानि की जोखिम से किसी भी ढंग से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर अध्ययन का कोई भी अंश या भाग ऐसा है जो प्रयोज्यों में हानि या अवांछित परिणाम अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेज उत्पन्न कर सकता है तो शोधकर्ता की यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह उस दुष्परिणाम को हटा दे। अगर यह किसी कारण से संभव नहीं है और इस बात की पूर्ण संभावना है कि शोध की प्रक्रिया का दुष्परिणाम प्रयोज्य पर होगा ही तो उस तरह के शोध को सामान्यतः नैतिक रूप से अमान्य समझा जाता है। ऐसी परिस्थिति में शोधकर्ता को शोध प्रक्रिया का प्रयोज्य पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में पर्याप्त सूचना देना तथा उनकी राय भी जान लेना आवश्यक होता है। 2. सूचित अनुमति इन्फॉर्म्ड कंसेंट। ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक सोसाइटी तथा अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ ने मनोवैज्ञानिक शोध की दूसरी महत्वपूर्ण नैतिक समस्या सूचित अनुमति की समस्या को माना है। जहाँ तक एवं जब जब संभव हो शोधकर्ता शोध के उन सभी पहलुओं के बारे में प्रयोज्यों को बदला दे जो शोध में भाग लेने की उनकी इच्छा को प्रभावित करता हो। इतना ही नहीं, शोधकर्ता को उन पहलुओं के बारे में भी स्पष्ट रूप से व्याख्या प्रस्तुत कर देना चाहिए जिनके बारे में प्रयोज्य प्रश्न करते हों। जब उन सभी पहलुओं को जानकर प्रयोज्य अध्ययन में भाग लेने की इच्छा व्यक्त करता है तो फिर उस शोध के प्रति पूर्ण ज्ञान हो जाने से संबंध उसकी अनुमति प्राप्त कर लेनी होती है। पैराग्राफ चेंज। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जहां प्रयोज्यों से सीधे सूचित अनुमति नहीं प्राप्त हो पाती है। जब शोध अध्ययन में भाग लेने वाले प्रयोज्य बच्चा होता है या फिर ऐसा वयस्क होता है जिसकी समझ बूझ धीमा होता है या संचार क्षमता नहीं होती है तो ऐसी परिस्थिति में इनसे सूचित अनुमति नहीं ली जा सकती। इस ढंग की परिस्थिति से निपटने के लिए मनोवैज्ञानिक शोधकर्ताओं ने उनके माता पिता या अभिभावक से सूचित अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता पर बल डाला है। अगर ऐसी अनुमति या अनुमोदन नहीं प्राप्त हो पाता है तो ऐसी शोध समस्या नैतिक रूप से अस्वीकार्य होगा या तो फिर उसका त्याग करना होगा या उसमें संशोधन करना होगा। ध्यान रहे कि किसी भी हालत में शोधकर्ता को प्रयोज्य से सूचित अनुमति प्राप्त करने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। पैराग्राफ चेंज। 3. धोखा का उपयोग यूज ऑफ डिसेप्शन। कुछ मनोवैज्ञानिक अध्ययनों का स्वरूप ऐसा होता है कि शोधकर्ता के लिए उन सभी बातों को प्रयोज्य से कहना संभव नहीं हो पाता है जिसे उन्हें कहा जा सकता है क्योंकि ऐसा करने से प्रयोज्य का वह व्यवहार प्रभावित हो सकता है जिसका अध्ययन होने वाला है। इतना ही नहीं, कभी कभी ऐसी भी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जिसमें प्रयोज्यों को बिना गुमराह किए विशेष मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का अध्ययन संभव नहीं हो पाता है। ऐसी परिस्थिति में जानबूझकर प्रयोज्यों को गुमराह कर या धोखा देकर अध्ययन करना ही पड़ता है। इस तरह के स्वाभिप्राय धोखा इंटेंशनल डिसेप्शन को अनैतिक माना जाता है तथा जहां तक संभव हो ऐसा नहीं करना चाहिए। अतः ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक सोसाइटी तथा अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ दोनों ही इस बात पर जोर डालता है कि शोधकर्ता को कुछ ऐसा विकल्प ढूंढना चाहिए जिसमें धोखा की बात नहीं हो। अगर ऐसा विकल्प कोई उपलब्ध नहीं हो और यदि शोधकर्ता यह समझता है कि दिया जाने वाला धोखा नैतिक रूप से एक अनुमेय प्रक्रिया परमिसिबल प्रोसीजर है तो उसके बारे में प्रयोज्यों को उचित मौके पर कुछ इशारा कर देना चाहिए। 4. प्रयोज्यों को प्रयोग के बाद प्रयोग के बारे में जानकारी देना डिब्रीफिंग ऑफ सब्जेक्ट्स। सभी मनोवैज्ञानिक अध्ययन में जिनमें प्रयोज्यों ने भाग लिया है आंकड़े डेटा संग्रहण के बाद उन्हें अध्ययन के स्वरूप के बारे में पूछे जाने वाले बातों को बतला देना चाहिए। शोधकर्ता को शोध प्रक्रिया के साथ हुए अपने अनुभव को बतला देना चाहिए ताकि अगर शोध का कोई अप्रत्याशित प्रभाव हुआ हो तो उसे नियंत्रित किया जा सके। इतना ही नहीं, यदि शोधकर्ता यह महसूस करते हों कि प्रयोज्यों पर कुछ अप्रत्याशित प्रभाव पड़ गया है तो उसे दूर करने के लिए उसे सक्रिय हस्तक्षेप एक्टिव इंटरवेंशन प्रयोज्यों द्वारा शोध परिस्थिति छोड़ने से पूर्व करना चाहिए। अतः शोध करने के लिए कार्यक्रम बनाते समय शोधकर्ता को आंकड़ा संग्रहण के बाद पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पर्याप्त खाली समय का प्रावधान रखना चाहिए। 5. अध्ययन से अलग हट जाने का प्रयोज्यों का अधिकार सब्जेक्ट्स राइट टू विदड्रॉ फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन। शोध प्रारंभ होने के पहले ही शोधकर्ता को प्रयोज्यों से यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि यद्यपि वे प्रयोग में भाग लेने की अनुमति दे चुके हैं फिर भी किसी भी समय वे अगर चाहें तो अपने आप को शोध से अलग कर सकते हैं। अगर कोई प्रयोज्य अपने आप में सचमुच में शोध प्रक्रिया के दौरान हुए अनुभव को मद्देनजर अलग करने का निर्णय लेता है तो उसका अधिकार यह भी बनता है कि वह अपने आप पर प्राप्त आंकड़ों को नष्ट करने की मांग करे। यदि कोई शोधकर्ता ऐसा नहीं करता तो उससे यह नैतिक समस्या का जन्म होगा। 6. प्रेक्षणात्मक शोधों में प्रयोज्यों की गुप्ति पर प्रहार इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी इन ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। वैसे मनोवैज्ञानिक शोध जो दिन प्रतिदिन के स्वाभाविक प्रेक्षण नेचुरल लिस्टिक ऑब्जर्वेशन पर आधारित होते हैं, उसमें कुछ नैतिक समस्याएं उठ खड़ी होती हैं, क्योंकि ऐसे अध्ययनों में प्रयोज्यों से सूचित अनुमति नहीं भी मिल सकती है। अतः ऐसे अध्ययनों में शोधकर्ता की यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि प्रयोज्यों के गुप्ति तथा उनके मनोवैज्ञानिक कल्याण का ध्यान रखें। अनुमति नहीं मिलने के कारण प्रेक्षणात्मक शोध सिर्फ उन्हीं स्थानों या परिस्थितियों में किया जाना चाहिए जिस स्थान पर प्रयोज्य मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रेक्षण किया जाना पसंद करता है। स्थानीय सांस्कृतिक मूल्यों तथा इस तरह के प्रेक्षण को प्रयोज्यों द्वारा अपनी गुप्ति पर एक तरह प्रहार होने जैसे तथ्यों की उपेक्षा शोधकर्ता को कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से नैतिक समस्याओं का जन्म होगा। 6 माफ कीजिए 7 आंकड़ों की गुमनामी तथा गोपनीयता कॉन्फिडेंशियलिटी एंड द एनोनिमिटी ऑफ डेटा। मनोवैज्ञानिक शोधों में प्रयोज्यों से प्राप्त आंकड़ों की गोपनीयता तथा गुमनामी बरकरार रखने से संबंध नैतिक समस्याएं उठती हैं। नैतिक संहिता एथिकल कोड इस बात पर बल डालता है कि शोध के दौरान प्रयोज्यों से प्राप्त आंकड़ों को गोपनीय रखा जाए। हाँ, कुछ विशेष परिस्थिति में ही इन सूचनाओं की गोपनीयता भंग की जा सकती है, और ऐसी परिस्थिति निम्नांकित 3 है। ए, जब प्रयोज्य को तात्कालिक खतरा हो तो वैसी परिस्थिति में मनोवैज्ञानिक शोधों से प्राप्त गोपनीय आंकड़ों को अन्य पेशेवरों प्रोफेशनल्स या जन अधिकारियों जैसे पुलिस कोर्ट आदि को बतलाया जा सकता है। बी, यदि प्रयोज्यों के गोपनीय आंकड़ों के बारे में महत्वपूर्ण विशेषज्ञों से बातचीत करना आवश्यक हो। सी, अगर स्वयं प्रयोज्य कुछ चयनित सेलेक्टेड व्यक्तियों से अपने गोपनीय आंकड़ों के बारे में बतलाने का लिखित अनुमति देता हो। पैराग्राफ चेंज। इतना ही नहीं, प्रयोज्यों को इस उम्मीद का अधिकार प्राप्त होता है कि यदि उनके आंकड़ों को प्रकाशित करना अनिवार्य है तो उसमें उनका नाम नहीं दिया जाए। अगर शोधकर्ता ऐसा नहीं करता है तो उससे नैतिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अगर किसी कारण से इस ढंग की गोपनीयता या गुमनामी को बरकरार रखना शोध में संभव नहीं हो तो इस तथ्य की सूचना शोध प्रारंभ होने से पहले ही प्रयोज्यों को दे देना चाहिए। पैराग्राफ चेंज। स्पष्ट हुआ कि जब मनोवैज्ञानिक शोध मानव प्रयोज्यों ह्यूमन सब्जेक्ट्स पर किए जाते हैं तो कुछ नैतिकता से संबंध समस्याएं उठ खड़ी होती हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए हालांकि संसार के 2 महत्वपूर्ण देश अर्थात अमेरिका एवं ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिकों ने कुछ नैतिकता संहिता बना रखा है, फिर भी अभी ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। पैराग्राफ चेंज। ऐसी नैतिक समस्याएं सिर्फ मानव प्रयोज्यों के साथ ही नहीं बल्कि पशु प्रयोज्यों का उपयोग करने पर उठती हैं, और उनका समाधान भी उन्हीं नैतिकता संहिता एथिकल कोड्स का पालन करके किया जाता है। परंतु शोध में सबसे महत्वपूर्ण नैतिक समस्या पशु के देखरेख तथा उसके कल्याण से संबंध है। अध्ययन के दौरान कोई भी पशु का दैहिक क्षति नहीं हो या फिर कम से कम हो, इसका पूर्ण ख्याल रखा जाता है। अध्याय सारांश। 1 विज्ञान साइंस के अर्थ को मूलतः 2 दृष्टिकोण से समझा जाता है। स्थैतिक दृष्टिकोण अंडर ब्रैकेट स्टैटिक व्यू तथा गत्यात्मक दृष्टिकोण डायनेमिक व्यू। वैज्ञानिक अपने क्षेत्र की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए किसी वैज्ञानिक विधि साइंटिफिक मेथड का चयन करते हैं। सामान्यतः वैज्ञानिक विधि से तात्पर्य उस विधि से होता है जिसके द्वारा वैज्ञानिक अपने विषय वस्तु का अध्ययन एक नियंत्रित परिस्थिति में करके वैध सामान्यीकरण वैलिड जनरलाइजेशन करता है। 2 वैज्ञानिक शोध साइंटिफिक रिसर्च का महत्व मनोवैज्ञानिक विज्ञान में अत्यधिक है। किसी स्वाभाविक घटना का क्रमबद्ध नियंत्रित आनुभाविक एवं आलोचनात्मक अनुसंधान जो घटनाओं के बीच कल्पित संबंधों के सिद्धांतों एवं प्राकल्पनाओं द्वारा निर्देशित होता है को वैज्ञानिक शोध कहा जाता है। वैज्ञानिक शोध की 10 विशेषताओं पर बल डाला गया है। 3 मनोवैज्ञानिक क्षेत्र के भीतर की समस्याओं के बारे में किए गए सभी तरह के शोध को मनोवैज्ञानिक शोध साइकोलॉजिकल रिसर्च कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक शोध प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल भी हो सकते हैं तथा अप्रयोगात्मक नॉन एक्सपेरिमेंटल भी। मनोवैज्ञानिक शोध साइकोलॉजिकल रिसर्च को मूलतः 2 विस्तृत भागों में बांटा गया है। सैद्धांतिक शोध थियोरेटिकल रिसर्च तथा अनुभाविक शोध एम्पिरिकल रिसर्च। इन दोनों तरह के शोधों के अनेक प्रकार बतलाए गए हैं। 4, शोधकर्ता के उद्देश्य पर्पस के अनुसार मनोवैज्ञानिक शोध साइकोलॉजिकल रिसर्च को दो भागों में बांटा गया है, मूल शोध प्योर और फंडामेंटल रिसर्च तथा प्रयुक्त शोध अप्लाइड रिसर्च। 5, मनोवैज्ञानिक शोध साइकोलॉजिकल रिसर्च की प्रमुख अवस्थाएँ होती हैं, किसी शोध विषय का चयन, सिलेक्शन ऑफ अ रिसर्च टॉपिक, चरों का वर्गीकरण अंडर ब्रैकेट क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स, उचित डिजाइन का चयन, सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट डिजाइन, विधि मेथड, परिणाम विश्लेषण एनालाइजिंग द रिसर्च तथा निष्कर्ष निकालना ड्रॉइंग कंक्लूजन। पैराग्राफ चेंज 6, मनोवैज्ञानिक शोध साइकोलॉजिकल रिसर्च का रिपोर्ट किसे तैयार किया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है, इस पर भी विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया है। अमेरिकन वे मनोवैज्ञानिक संघ अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के प्रकाशन मैनुअल अंडर ब्रैकेट पब्लिकेशन मैनुअल द्वारा बतलाए गए फॉर्म को मनोवैज्ञानिकों द्वारा मानक स्टैंडर्ड माना गया है और मनोवैज्ञानिक शोध का उल्लेख रिपोर्टिंग इस फॉर्म से किया जाता है। इस फॉर्म में 7 अनुच्छेद सेक्शन हैं जिनका पालन करते हुए मनोवैज्ञानिक शोध की रिपोर्ट तैयार की जाती है। 7, मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक शोध प्रस्ताव को लिखने के एक प्रारूप का भी वर्णन किया गया है जिसमें 9 प्रमुख चरणों को दर्शाया गया है। 8, मनोवैज्ञानिक शोधों कई तरह की नैतिक समस्याओं का जन्म होता है जिसमें 7 प्रमुख ऐसी समस्याओं पर बल डाला गया है। प्रथम पाठ समाप्त।